प्रिय श्रोता नमस्कार, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको अपने जीवन में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से सबोपदेशक नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, और हमें विश्वास है श्रोताओं कि इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा आपको निश्चय ही प्रेरणा मिल रही होगी। तो आइए श्रोताओं, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के सामर्थ्य और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं, और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों सबोपदेशक की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, और आज यह हमारे लिए अंतिम अध्ययन होगा। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है। आज हम आपके वचन में से सुनना, सीखना और समझना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से हर एक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज जो कुछ भी हम सुनते हैं समझ सकें और अपने जीवन में उसे ग्रहण करके उसके अनुसार चल सकें। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, संसार और शैतान के उन छल प्रपंच से आप हमारी रक्षा करें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं। प्रभु, आप उन्हें सामर्थ प्रदान करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप मेरे साथ सबोपदेशक की पुस्तक उसके 12 अध्याय और उसके 2 पद पढ़िए। सबोपदेशक 12 अध्याय उसके 2 पद में इस प्रकार से लिखा है, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आएं। क्या उसके कहने का अर्थ है कि सूरज, चांद, सितारे और बत्तियां सब अंधकारमय हो जाएंगी? जी नहीं, उसके कहने का अर्थ है कि जब आप उन्हें देखेंगे तो आपकी आंखें उन्हें ज्योतिर्मय नहीं देख पाएंगी। मैं अपनी पत्नी के साथ में एक बार दक्षिण भारत की ओर गया हुआ था, और वहां पर एक समूह में हम लोग थे। वहां एक दिन पूरा चांद देख मैंने अपनी पत्नी से कहा, यह पूरा चांद कैसा सुंदर लग रहा है, परंतु मेरे विचार में तो इसमें पहले जैसा आकर्षण नहीं रहा, आपको कैसा लगता है? उन्होंने कहा, हाँ, यह पहले जैसा रोमांचकारी नहीं लगता है। मैं तो सोचती थी कि यह स्थान जो समूह संसार का सबसे अधिक सुंदर स्थान है, परंतु ऐसा नहीं। मेरे मित्रों, जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो चमक दमक कम हो जाती है, और समय के साथ साथ अनुभवों का क्रम भी चलता रहता है। वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आएंगे। बुढ़ापे में आप मनोरंजन हेतु कहीं जाकर आनंद ले सकते हैं, परंतु फिर आपको 3-4 दिन विश्राम करने की आवश्यकता पड़ती है। कई बार हमारे बुजुर्ग माता पिताओं का भी यही अनुभव होता है। मैं अपनी सभाओं में अत्यधिक व्यस्त रहता हूं और उसका पूरा आनंद लेता हूं, परंतु अब मेरी पत्नी और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमें अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, अर्थात मुझे घर में अर्थात परिवार में भी समय देने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार यात्रा करने से थकान अधिक होने लगती है। वर्षा होने के बाद बादल फिर आएंगे। सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय के 3 पद में लिखा है, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पीसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी और झरुखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी। यह बुढ़ापे के शरीर का विवरण है। घर के पहरुए कांपेंगे, यह पैरों के बारे में है क्योंकि बुढ़ापे में पैर लड़खड़ाने लगते हैं। मेरे सहकर्मी और मित्र मुझसे मजाक करते हैं, आप स्वस्थ और बलवंत दिखते हैं, परंतु जब मैं कभी दौड़ता हूं या बैठता हूं तो कभी कभी मुझे भी थकान होती है और विशेष करके मैं देखता हूं कि मेरे पिता काफी थक जाते हैं और उन्हें सहारा की आवश्यकता पड़ती है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पैर अब पहले जैसे बलवंत नहीं रहे। जब कभी सुबह मेरे पिताजी टहलने के लिए जाते हैं तो वे कभी कभी कराहते हैं, तब मेरी माँ उनसे पूछती है कि क्या हुआ, आप कराह क्यों रहे हैं? तब उनका कहना होता है कि कराहना तो धर्मशास्त्र पर आधारित है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 4 पद में पौलुस कहता है, हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं। तब मैं उससे कहता हूं कि मैं धर्मशास्त्र के अनुसार कराह रहा हूं, परंतु सच तो यह है कि सीढ़ियों से उतरते समय पिताजी के घुटनों में दर्द होता है, घर के पहरुए कांपेंगे। अब मैं देखता हूं कि मेरे पिताजी पहले से अधिक कांपते हैं और जब वे सीढ़ी चढ़ते हैं तब भी वे अधिक सावधान रहना चाहते हैं। बूढ़ा मनुष्य चलने के लिए लाठी का सहारा लेता है। मेरे पिताजी अभी तक ठीक से लाठी नहीं पकड़ते, फिर भी मैं विचार करता हूं कि उन्हें लाठी की आवश्यकता है। बलवंत झुक जाएंगे, कंधे झुक जाएंगे। मेरी पत्नी ने एक दिन मुझसे कहा, आप सीधे खड़े रहते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। कई बार कमर दर्द की वजह से मैं झुक जाता हूं। जवानी में तो आपके कंधे बड़े चौड़े होते थे, परंतु अब तो आप झुक गए हैं। जी हाँ मेरे मित्रों, बलवंत भी झुक जाएंगे, कंधे झुकने लगते हैं और विश्वास कीजिए कि यह अधिक आरामदायक होता है। पीसनहारियां थोड़े रहने के कारण काम करना छोड़ देंगी। पीसनहारियां दांत हैं, बुढ़ापे में दांत गिर जाते हैं, आपको नकली दांत लगवाने पड़ेंगे। अभी तो मेरे दांत हैं, परंतु हो सकता है कि बुढ़ापे में मुझे इसकी आवश्यकता पड़े। झरखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी, आंखें खराब हो जाएंगी। एक बार एक व्यक्ति मेरे घर के सामने से गुजरा और पापा मेरे सामने बैठे थे और उस व्यक्ति ने पापा को हाथ हिलाते हुए हाय कहा, परंतु इन्होंने उसे नहीं देखा। मैंने उससे कहा कि पापा, उस व्यक्ति ने आपको हाथ हिलाया, आपने उसकी ओर नहीं देखा, कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने कहा कि मैंने उसे देखा नहीं, वह कौन था? मेरे प्रियो, अब मुझे पता है कि उनकी आंखें कमजोर हो रही हैं, उसे पहचानने में दिक्कतें आ रही है, वह उसे पहचान नहीं पाए, वह बहुत बदल गए हैं। आज हम में से कई बुजुर्ग माता पिता की भी स्थिति यही है, वह भी बदल गया है और आप भी बदल गए हैं। तब मेरी माता ने कहा पिताजी से, देखा आपने, खिड़की से झांकने वालियां अंधी हो गई हैं। जी हाँ, मेरे पिताजी चश्मा पहनकर भी पहले जैसा नहीं देख पाते हैं, पहले जैसी ज्योति उनकी आंखों में अब नहीं है। सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय के 4 पद में आगे लिखा है, और सड़क की ओर से किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़ियां बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। सड़कों की ओर के किवाड़ बंद होंगे, अर्थात सुनना भी कम हो जाएगा। मेरी माँ मेरे पिता के मित्रों से कहती है कि आपको जोर से बोलना पड़ेगा, अब यह कम सुनने लगे हैं। ऐसा वास्तव में नहीं है, परंतु वह कहती है कि आजकल मेरे पिताजी कम सुनते हैं, अर्थात नहीं सुन पाते हैं। हो सकता है कि उसकी बात सुनना वो नहीं चाहते हों। कुछ वर्ष पूर्व हमारा एक पड़ोसी था, वह कान में सुनने की मशीन लगाता था। वह जब अपने पेड़ों की छटनी करता था तब सीढ़ी पर चढ़कर काम करता था। उसकी पत्नी आकर उसे चेतावनी स्वरूप बहुत कुछ कहती थी, परंतु वह सुनने की मशीन कान से निकाल देता था। अंत में थक कर वह कहती थी, तुमने शायद कान में मशीन नहीं लगाई है। हाँ, वह नहीं लगाता था कि उसे कोई टोके तो उस पर कोई असर ना हो। मेरे प्रियो, सड़क का शोर पहले से कम सुनाई देगा, सड़क की ओर से किवाड़ बंद हो जाएंगे, चक्की पीसने का शब्द धीमा हो जाएगा, वे पहले जैसी आवाज नहीं करेंगी, तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा। मुझे स्मरण है कि जब मैं छोटा था तो अलार्म घड़ी के बजने पर भी नहीं जागता था। युवावस्था में मेरी पत्नी और मैं बच्चों का शोर सहन कर लेते थे। हमें पड़ोसियों के घर से आता संगीत का शोर कष्टदायक नहीं लगता था। कैसा भी शोर हो, हमारी नींद में विघ्न नहीं होती थी। परंतु अब एक चिड़िया की चहचहाट भी हमें नींद से जगा देती है। अब तो जब भी होटल में कहीं पर मैं जाता हूं तो उनसे शांत स्थान में कमरा ढूंढने की कोशिश करता हूं, अर्थात मांगता हूं। हम अब उम्र में बढ़ रहे हैं, इसलिए कम से कम आवाज भी हमारी नींद में विघ्न डालती है। यह सब हर एक मनुष्य के लिए होता है। चिड़िया की आवाज से ही हम जाग उठते हैं। मेरे प्रियो, सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। आपको गायन मंडली में बूढ़े लोग नहीं मिलेंगे। बुढ़ापे में आवाज फटने लगती है और बेसुरी हो जाती है। मुझे स्मरण है कि होमर रोड हीवर अपनी युवावस्था में एक प्रवीण संगीतकार और संगीत निर्देशक थे। वह बिली संडे के साथ जगह जगह पर प्रचार करने के लिए जाते थे और तब एक कलीसिया में उन्हें आराधना में आमंत्रित किया गया। उस समय वह 70 दशक में थे। वह अब भी सर्वोत्तम संगीत निर्देशक थे, परंतु गाते समय बीच बीच में ऐसा लगता था कि वे पढ़ रहे हैं। उनकी वाणी में अब वह पुरानी मधुरता नहीं थी। बुढ़ापे में गायकों की वाणी बैठ जाती है। हम जो गा नहीं सकते, हमें परमेश्वर की स्तुति मन में करना चाहिए। युवावस्था में आप गा सकते हैं, परंतु बुढ़ापे में नहीं गा सकते हैं। यह अति भयानक है। गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। वह वृद्धावस्था के बारे में और कहता है, और मेरी समझ में यह त्रासदी है, क्योंकि वह मनोविज्ञान के प्रभाव को प्रकट कर रहा है। सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेंगी और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा। मुझे ऊंचाई से कभी कभी डर लगता था, परंतु मैं धीरे धीरे डर पर विजय प्राप्त कर लिया और ऊंचाई का आनंद लेने लगा। परंतु जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो फिर से डर भी आने लगता है। अब छोटी छोटी बातें मुझे परेशान करने लगती है, जिनके मैं जवानी के दिनों में कुछ भी चिंता नहीं करता था। मेरे प्रियो, मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी। अब हमें पहले जैसा आनंद प्राप्त नहीं होता है। हमने अपनी प्रचार यात्राओं का बहुत आनंद लिया, परंतु जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपको पता चलता है कि अब आपकी यात्रा कष्टदायक होगी। कहने का मतलब है कि हम जिन बातों की कभी चिंता नहीं करते थे, अब उन्हीं बातों से परेशान हो जाते हैं। युवा अवस्था में हम अपनी कार में भी यात्रा कर सकते हैं, मोटरसाइकिल में भी यात्रा करते हैं और होटलों में जगह जगह पर जा करके आप सड़क के किनारे खाना खा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, परंतु अब आपको डर लगता है। अब यात्रा करने से पहले हम अपने को आरक्षण के समय में रखते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हमारी सीट कन्फर्म है या नहीं, और मार्गों के नक्शे आदि भली भांति हम देखते हैं। मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी। बादाम का पेड़ फूलेगा। बादाम का पेड़ फूल आने पर पूरा सफेद दिखता है। वृद्ध जनों का सिर पूरा सफेद हो जाता है, या फिर वहां कुछ भी नहीं रह जाता है। टिड्डा भी भारी लगेगा। टिड्डा कैसे भारी लगेगा? बूढ़े मनुष्य के लिए छोटी बात मन का बोझ बन जाती है। बूढ़े लोग अपने नाती पोतों की संगति से बहुत खुश होते हैं, परंतु कुछ समय के बाद ही उनसे वे ऊब जाते हैं और उनके घर लौट जाने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। शक्ति कम हो जाती है, सहन शक्ति कम हो जाती है, धीरज टूटने लगता है, छोटी छोटी बात पर क्रोध आने लगता है और फिर से बचपन के जैसा व्यवहार होने लगता है। भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा। आप में से कई लोग दिखाते तो हैं कि आप जवान हैं, परंतु आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। मुझे स्मरण है कि एक प्रचारक ने एक युवती से विवाह किया। वह प्रचार मंच पर कूद कूद कर कहता था कि वह जवान है, परंतु वह जनता को नहीं स्वयं को मूर्ख बना रहा था। वह शीघ्र ही मर गया। अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। यह सदा का घर अनंत निवास है, अर्थात मृत्यु निकट है। सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय के 6 पद में लिखा है, उस समय चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। मेरे मित्रों, यहां पर हम फिर से देखते हैं कि यह शरीर के अंगों की सूची है। वे काम करना बंद कर देंगे। चांदी का तार, रीढ़ की हड्डी, सोने का कटोरा, खोपड़ी। वृद्धावस्था में मस्तिष्क काम कम करता है और मरने पर वह समाप्त हो जाता है। घड़ा फेफड़े हैं। सोते के पास का घड़ा फूट जाएगा। रहट अर्थात दिल, कुंड के पास रहट टूट जाएगा। वह शरीर में खून नहीं बहाएगा। यह सब वृद्धावस्था की दुर्बलताएं हैं जो अंत में मृत्यु लाती है। इन अंगों के सुचारू रूप से काम करने के बिना जीवन नहीं चलेगा। सबोपदेशक 12 उसके 7 में लिखा है, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। ध्यान दीजिए, आत्मा मरती नहीं है। वे जो आत्मा के मरने में विश्वास रखते हैं वे इस पद तक पढ़ते जाएं तो अच्छा होगा। शरीर मर जाता है, परंतु आत्मा उस परमेश्वर के पास चली जाती है जिसने उसे शरीर में डाला था। मैं यहां दोहराना चाहता हूं कि नए नियम में दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है कि देह में अनुपस्थित होने का अर्थ है प्रभु के पास उपस्थित होना। आत्मा तुरंत ही परमेश्वर के पास चली जाती है। यह देह एक तंबू है जिसमें हम लोग रहते हैं। यह केवल बाहरी घर है। आत्मा तो परमेश्वर के पास चली जाती है। एक नेता थे जिनकी वृद्धावस्था में किसी ने पूछा, आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने उत्तर दिया, मैं तो बहुत अच्छा हूं, परंतु मेरा यह घर कमजोर होता जा रहा है और मैं शीघ्र ही इससे बाहर निकल जाऊंगा, अर्थात देह से निकल जाऊंगा। सबोपदेशक 12 अध्याय के 8 पद में हम पढ़ते हैं, उपदेशक कहता है कि सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मेरे प्रियो, यहां पर हम फिर से देखते हैं, विशेष करके हमारे जवान भाइयों, ध्यान दीजिए कि जीवन खोखला है। यदि आप जीवन को केवल यहीं तक सीमित मानते हैं तो एक दिन आपके पास केवल राख होगी और सामने अनंत जीवन। किसी ने बड़ी अच्छी कविता लिखी है, बच्चा था तो रोया और हंसा, समय रेंगता सा चला, किशोर हुआ तो कल्पना की बातें की, समय चल पड़ा, वयस्क हुआ तो समय दौड़ा, मैं बढ़ता गया समय उड़ता गया, शीघ्र ही चलते चलते होगा समय पूरा। भजन संहिता 90 उसके 12 पद में भजनकार कहता है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमता से जिएं, और बुद्धि प्रभु यीशु है। प्रभु हमें मर्यादा से पूर्ण वृद्धावस्था का अनुग्रह प्रदान करे। शिक्षा जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं है। मेरे प्रियो, प्रयोगों का परिणाम को हम देखेंगे। सवोपदेशक 12 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। परमेश्वर का भय मान, यह सवोपदेशक की पुस्तक का संदेश है। सूर्य के नीचे जितने भी प्रयोग किए गए हैं उनके प्रकाश में बुद्धिमानी इसी में है कि परमेश्वर का भय माने, अर्थात उसको श्रद्धा अर्पित करे, उसकी आज्ञा माने, उसकी आराधना करे, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, अर्थात उद्धार के लिए उसके शर्तों को पूरा करो। किसी भी आयु में परमेश्वर पर विश्वास में स्थिर होकर, कैन के लिए मेमना बलि करना परमेश्वर का आज्ञा पालन था। अब्राहम के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना था। इसराइल के लिए मिलाप वाले तंबू या मंदिर में बलि चढ़ाना था। और हमारे लिए प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 31 पद में कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आप मोक्ष पाएं, उद्धार पाएं, तो आज प्रभु यीशु पर विश्वास करें। न केवल आप, परंतु आपका पूरा घराना उद्धार पाएगा, शांति और आनंद को प्राप्त करेगा। सवोपदेशक 12 उसके 14 पद में, जो इस अध्याय का अंतिम पद है, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर सब कामों का, भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर सबका न्याय करेगा, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य पापी है और परमेश्वर की दृष्टि में दोषी है। प्रभु यीशु ने हमारा दंड अपने ऊपर में उठा लिया और मर गया। हमारे पाप जो हमने किए हैं, मसीह यीशु पर विश्वास के द्वारा डाल दिए गए हैं, या हमें श्वेत सिंहासन के समक्ष खड़ा होना होगा। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। क्यों? इसका कारण सुस्पष्ट है कि उद्धार के विषय में आपके उद्धार पाने की संभावना अधिक है, और जहां तक सेवा का प्रश्न है, आपके पास समर्पण के लिए कुछ है। इसका अर्थ यह नहीं कि बूढ़े लोग प्रभु को ग्रहण करके उधार नहीं पा सकते। हमने अपने रेडियो कार्यक्रम में मसीह को ग्रहण करने वालों से हाथ उठाने को कहा था। एक महिला ने अपने 90 वर्षीय पिता को रेडियो के सामने कुर्सी पर बैठे हाथ उठाए हुए देखा। उसने कारण पूछा तो उसके पिता ने बताया कि उसने मसीह को ग्रहण किया है। कैसे आनंद की बात है। युवाओं से आग्रह करने में सुलेमान के पास एक और कारण था। उनके पास जीवन में अधिक समय है कि परमेश्वर की सेवा करें। जिनके पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ था, वे सब युवा थे। यूसुफ, मूसा, गिदोन, दाऊद, यर्मिया, शाउल जिसे हम पौलुस कहते हैं, तिमोथियस और युवा सेवकों में प्रमुख मोफत, जिसने बचपन में प्रभु यीशु को ग्रहण किया, और आगे चल करके दक्षिण अफ्रीका का एक महान प्रभु का सेवक बना। मेरे मित्रों, सूर्य के नीचे की समस्याओं का समाधान नहीं है। जीवन की समस्याओं का एक ही समाधान है, प्रभु यीशु मसीह। उसने सब युगों के मनुष्यों से प्रतिज्ञा की है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 37 पद में, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या आज आप उसके पास आने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस महान शांति और आनंद को पाना चाहते हैं, या आप इस संसार के जैसा अपना जीवन जीना चाहते हैं? निर्णय आपके हाथ में है। सुलेमान ने अपने सारे प्रयोगों के द्वारा इस बात को पाया है कि सब कुछ व्यर्थ है। अंततः वह कहता है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। मेरे मित्रों, आपके लिए सौभाग्य है कि आप परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा पा सकते हैं। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। इसके साथ सवोपदेशक की पुस्तक का भी अध्ययन समाप्त होता है। अगले अध्ययन में एक नई पुस्तक के साथ अपने अध्ययन को हम सब आरंभ करेंगे। कृपया आप प्रभु के निकटता में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबकी सहायता करे कि आप एक सही निर्णय अपने जीवन के लिए ले सकें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
हम तो जल जो अति प्रेम